माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bolo 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 Everybody chant Bolo bolo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sab log bolo Everybody loudly Bola 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 Srunaka Jaya Jaya Prabhupad 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 Jaya Prabhupad Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jaya गौर प्रेमानंदे श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की श्री श्री लाडली लाल की मिथाई गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे सारी म्यूजिक बंद कर दो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कलिर दोषेर निधेर राजन अस्ति एको महान गुण कृष्णाद एव कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत ये करभाजन मुनि जो है वो राजा निमि को 11वें स्कंद में भागवत में उपदेश दे रहे हैं वैसे नव योगेंद्र हैं उसमें से ये जो नवे योगेंद्र लास्ट योगेंद्र है 11वें स्कंद भागवत में उनका बहुत सुंदर शिक्षा हमको प्राप्त होती है तो वो निमि राजा को कह रहे हैं राजन कलिर दोषेर निधिर राजन क्या कह रहे हैं कि कलियुग में दोषों का सागर पड़ा हुआ है कलयुग ही दोषों का सागर है ओशन ऑफ फॉल्ट्स एक दो नहीं है सागर में कितना पानी होता है तो कोई गिन सकता है क्या उतने दोष है कलयुग में अनंत लेकिन फिर भी कलयुग की साधु लोग पूजा करते हैं अब ये भी बड़े आश्चर्य की बात है ना जिसमें सागर दोषों का सागर पड़ा हुआ है उसमें भी उसकी भी साधु ऋषिगण पूजा करते हैं क्योंकि कारण ही ऐसा तगड़ा है अस्ति एको महान गुण एक महान गुण है कलयुग के अंदर जो दोषों के सागर को भी मिटा सकता है नष्ट कर सकता है प्रभाव उसका नष्ट हो सकता है क्या है वो कीर्तनाद एव कृष्णस्य कृष्ण के नाम का जो कीर्तन है वो इतना शक्तिशाली है कि ये दोषों के सागर को भी वो नष्ट कर सकता है
और मुक्त संग परम ब्रजेत। इसका सहारा लेने वाला जो व्यक्ति है, इसका सहारा जिसने लिया है, इस प्रक्रिया में जिसको श्रद्धा है कि हाँ दिस इज द वन, और श्रद्धा पूर्वक जो इस प्रक्रिया में भाग लेता है, मुक्त संग परम ब्रजेत, उसकी परम गति, परम धाम को गति हो जाती है, यानी कि भगवान के धाम में गति होती है। इसलिए साधु उसकी पूजा करते हैं। देवता लोगों का जो आयुष्य होता है ना, लाइफ होता है ना, वो जैसे उनका लोक बढ़ता है, हाँ, भूर भूवर स्वर जन तप महर सत्य, ये 7 लोक हैं ऐसे चढ़ती क्रम में। उसमें जैसे आप जिसमें योग्य हो जाएंगे जाने के, वैसे आयु बढ़ती जाती है, 1,00,000 साल, 10,00,000 साल, 1,00,000,000 साल, 10,00,000,000 साल। ऐसे ब्रह्मा की आयु कितनी है? 311 अब्ज साल। मतलब ब्रह्मांड का जितना कालावधि है ना, उतना उनका आयुष्य होता है। उनका जन्म होता है तो ब्रह्मांड का आरंभ होता है, उनका मृत्यु का समय आता है तो ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ब्रह्मा जी को भी जन्म और मृत्यु है। तो ये चढ़ते हुए लाखों करोड़ों साल की जितनी आयु है, वो जो देवता है जिनको इतनी बड़ी आयु प्राप्त है, वो सब लोग कलयुग में पृथ्वी पर मनुष्य के शरीर पे जन्म लेना चाहते हैं। कारण क्या उसका? वहां पर लाखों करोड़ों साल रहने के बाद भी भगवान की धाम की प्राप्ति होगी, इसकी गारंटी नहीं है। कारण क्या उसका? क्योंकि इतना भोग है वहां पर, इतने प्रकार का भोग है। कई जगह शरीर के भोग हैं, कई जगह मन के भोग हैं, कई जगह भावना के भोग हैं, कई जगह कलाओं के भोग हैं। एक्सपर्ट म्यूजिक में इतने एक्सपर्ट है कि आपको, जैसे आप देखें ना जो कलाकार कैसे होते हैं, उनको दुनिया में रुचि होती नहीं, कौन जाति क्या है भाई, कला में इतने मशगूल रहते हैं वो कि किसी का भेदभाव विदा करते नहीं, वो अपनी कला में मस्त रहते हैं। और पृथ्वी पर रह के उनको कला में इतना दिल लगता है, इसलिए वो दारू पीते हैं, नशा करते हैं, उसमें ऊपर जाते हैं, फिर कला, जैसे हमारे नाम नहीं लेता मैं, बहुत सारे अपने म्यूजिशियंस हैं ऐसे जो इधर रह सकते नहीं, वो उनको उधर ही रहना पड़ता है। तो इतने सारे भोग है उधर, इतने सारे भोग है, इतने सारे जन्म और इतने सारे वर्ष तक उनको वहाँ रहना पड़ता है। फिर क्या होता है? क्षणे पुण्य मर्तलोके विशंति। क्षणे पुण्य मतलब पुण्य को इकट्ठा करके वहाँ जाते हैं। और जब पुण्य, हम लोग भी, आपने जलेबी खा लिया आज, तो आपका एक पुण्य का फल समाप्त हो गया। 500 रुपये थे, 100 रुपये का जलेबी खा लिया, 400 रुपये बचे, 100 रुपये खत्म। उस तरह से जैसे भोग लेते जाएंगे आप, वैसे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। और जैसे पुण्य समाप्त होते हैं, क्षणे पुण्य मर्तलोके मतलब पृथ्वी पर, विलोकयंती, वापस आना है आपको इधर ही। डिज्नीलैंड में कैसा होता है, एसएल वर्ल्ड में कैसा होता है, जितना कूपन निकाला है तब तक खेलते रहने का अंदर, कूपन खत्म हो गया तो आउट, नया कूपन खरीद के वापस अंदर आना होता है। उस तरह स्वर्गलोक में उतना ही टाइम आप रह सकते हो जितना आपका पुण्य का स्टॉक हो, फिर पृथ्वी पर ही आना है। और पृथ्वी का लाभ क्या है, खास करके कलयुग में, खास करके मनुष्य के जीवन में, कि केवल 70-80 साल के, अभी तो बहुत 70-80 बहुत होते हैं, पेपर में नाम आएगा आपका धीरे धीरे, 80 हो गए तो, अभी 100 के लिए आता है, बाद में 80 के लिए भी आ जाएगा। तो वो इतने छोटे से काल में आप भगवान के नाम के कीर्तन का आश्रय लेकर भगवत धाम में पहुंच सकते हैं। इसलिए सारे देवतागण पृथ्वी पर मनुष्य के, और खास करके वैष्णवों के घर में जन्म लेने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। वो कौन से देवता लोग हैं? देवता लोगों में ही बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। उधर भी नारद बोले जाते हैं प्रचार करने के लिए। क्या जरूरत है प्रचार करने के लिए? देवता लोग कितने अच्छे लोग होते हैं। नहीं, बहुत सारे देवता लोग केवल भोग में लिप्त रहते हैं, भोग लेने के लिए वहां पर गए ना वो, पुण्य यहाँ पर पुण्य कमा करके उधर क्यों गए? वो आनंद लेने के लिए गए, भोग लेने, शरीर का, मन का, खाने पीने का, दर्शन का, रूप का, सब भोग लेने के लिए गए। लेकिन कुछ कुछ देवता ऐसे होते हैं, जैसे गणपति है, चंद्र सूर्य जैसे विद्वान देवता है, वो सबसे उसमें प्रधान देवता है, उनको बहुत ज्ञान है, उनको, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। वैसे देवता जो होते हैं ना, जो सत्संग में है, देव ऋषि नारद मुनि अंगिरा मुनि जो वहाँ घूमते रहते, दुर्वासा मुनि, वो भी जाते रहते, प्रचार करते रहते हैं वहाँ पर, भैया पृथ्वी से यहाँ पर आए हो भोग लेने के लिए, अभी इतना भोग मत करना नहीं तो भगवान को भूल जाओगे, फिर वापस पृथ्वी पर जाकर दुख भोगना पड़ेगा आपको, ऐसे प्रचार करते रहते हैं वहाँ पर। वहाँ पर भी भागवत चलती रहती है रेगुलरली। अब वैसे आप लोग सत्संग में आए, धाम में आए, वैसे भी वो लोग सत्संग में आते रहते हैं वहाँ पर। हाँ, ये बात समझना, कुछ विशेष चीज़ है। जैसे हम डॉक्टर हैं और आप समझो डॉक्टर नहीं है, समझो क्या, वही तो है ना, खाना पीना रहना सोना भावना सामान्यता वही होती है। डॉक्टर लोग भी घर में वैसे झगड़ा करते हैं जैसे आम लोग करते हैं। हाँ, बड़े बड़े जो IAS ऑफिसर होते हैं, IPS ऑफिसर होते हैं, उनके घर में भी पति पत्नी वैसा ही झगड़ते हैं जैसे झोपड़ी में भिखारी लोग झगड़ते हैं, क्योंकि मना मानसिक प्रवृत्ति बदलती नहीं है पढ़ाई लिखाई होने से। उस तरह से देवताओं का शरीर प्राप्त होने से, वो सौंदर्य प्राप्त होने से, वो लोक प्राप्त होने से, लंबी आयु प्राप्त होने से सामान्य स्वभाव बदलता नहीं है, वैसे ही रहता है वो। उनको प्रचार करना जरूरी पड़ता है। जैसे हम लोग डॉक्टर लोगों के लिए एक अलग मंडली बनाई है, अलग उनको मिलते हैं, लेकिन बताते क्या है, वही बताते हैं, जब करो माया में से दूर हो जाओ, कितना काम में व्यस्त रहोगे, करो, ये जीवन है, जीवन बहुत कम समय के लिए है, समाप्त हो जाएगा चुटकी भर से एक दिन। बातें वही बताते हैं, लेकिन उनको अलग से सुनना अच्छा लगता है कि बाजू में कौन बैठा है, डॉक्टर है ना, ठीक है भाई, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ बाजू के लिए कोई ऐसा कोई दूसरे बैठ गए तो, अरे मैं कहाँ गया, आ गया इनके भी, इनसे इनमें वैसे बैठ कर मैं कैसे सुनूंगा, ऐसा होता है। तो देवता लोग को जैसे विशेष नहीं होते हैं, सद्गुणी होते हैं, सात्विक होते हैं, सद्गुणी होते हैं निश्चित रूप से, नो डाउट। लेकिन ऐसे सद्गुणी देवताओं में से विशेष देवता जो हैं, वो सारे देवता जिनको ज्ञान हो चुका है कि ये लंबी लंबी लाखों साल के आयुष्य जो है वो उसका कोई वैल्यू नहीं है, भोग ही भोग है। भोग कैसा है ना, आज लिया तो कल वापस चाहिए, आज जलेबी खाया तो आज का आनंद आज समाप्त हो गया खाने के बाद, फिर कल चाहिए तो कल दोबारा जलेबी खाना पड़ेगा, सब टेम्पररी है ऐसा कुछ। वो देवताओं का आनंद भी टेम्पररी है, वहाँ पर अप्सरा के साथ में एंजॉय किया तो टेम्पररी है, कल वापस दूसरी अप्सरा चाहिए, यही सब जगह यही है। आ ब्रह्मा भुवनार लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुना, आप स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, पृथ्वी में जाओ, कहीं पर जाओ, अमेरिका, इंग्लैंड, भारत के गांव में जाओ, किधर भी जाओ, सब जगह पर एक ही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, कहीं पर छुटकारा नहीं है, सब जगह एक ही चक्र है। ब्रह्मा लोक में भी ऐसा लगता है कि है ही नहीं मृत्यु, इतनी लंबी आयु है, लगता है कि अरे एक रात में, हमारे एक रात में हम सो के उठते हैं तो कीटकों की 7 पीढ़ियाँ खत्म हो जाती है, और हम केवल सो के एक रात को दिन में उठ रहे हैं अगले दिन के लिए। वैसे हमारे यहाँ पर कितनी पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी, तभी भी वह है उधर बैठे हुए, देवता लोग देख रहे हैं, सूर्य चंद्र अपने को देख रहे हैं, कि हम आए, हमारे बच्चे आए, हमारे बच्चों के बच्चे आए, दादा परदादा आए, सब वही इधर ही है वो देवता लोग। लेकिन लंबी आयु हो छोटी आयु हो, उससे कोई मुक्ति का लेना देना नहीं है। भगवान की भक्ति और मुक्ति जो है वो लंबी आयु से, विद्या से, सुंदर रूप से नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि अस्ति एको महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्णस्य, कृष्ण भगवान के कीर्तन का आश्रय लेने से, फिर वो देवता हो या कीटक हो या प्राणी हो या मनुष्य हो या राक्षस हो, दैत्य हो, दानव हो, वो सब लोग मुक्त हो सकते हैं। इतना सुंदर बात शुक्राचार्य ने बताई है, हाँ सब लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। शुक्राचार्य को वामन देव बोलते हैं कि देखो ये मेरा भक्त जो है महाबली, इसने 99 यज्ञ किए और वो पूरे सफल हो गए, पूरी तरह से मतलब परफेक्ट, कोई दोष त्रुटि कुछ नहीं उसके अंदर। लेकिन 125 यज्ञ के मैं बीच में मैं आया और इतनी लीला हो गई, इधर मैंने 3 कदम के बदले में 2 कदम में नाप लिया पूरा, तो इसका ये 125 यज्ञ जो है ना वो क्या कहते हैं, फॉल्टी हो गया। वो घंटियां मत बजाओ भैया, घंटियां मत बजाओ, तो 125 यज्ञ जो इनका है ना वो अपूरा हो गया, अधूरा हो गया। मतलब हर एक यज्ञ में जितना भी दान का वादा किया उतना सब दान दे दिया, 125 यज्ञ में जो वादा किया वो पूरा नहीं हुआ, तो एक तरह से 125 यज्ञ जो है अधूरा रह गया, फेल हो गया। लेकिन महाबली तो विष्णु के बड़े परम भक्त थे, यहाँ तक कि आत्मनिवेदन, इस प्रकार के जो नवदा भक्ति का एक लास्ट हिस्सा है, सर्वोत्तम हिस्सा नवदा भक्ति का, नाइन्थ लेवल, वो क्या है? आत्मनिवेदन, शरणागति, समर्पण। उसके आचार्य है वो, उसने सब कुछ निछावर कर दिया भगवान के ऊपर, अपना अहम भी निछावर कर दिया सब, मतलब तीन लोगों के स्वामी एक चुटकी में भिक्षुक बन गए। अभी कुछ भी नहीं उनके पास, उनका खाली वस्त्र है, उनका शरीर है, बाकी सब कुछ भगवान का हो गया। इतना सुंदर उन्होंने प्रदर्शन किया आत्मनिवेदन का, और वो रो रो के नहीं किया, खुशी से किया। बोले भगवान मैं खुद बचा हूँ, मेरे पे सर पे चरण रख लो अपना और तीन कदम पूरे करो। फिर भी उन्होंने कहा कि बलि का सौवा यज्ञ अपूर्ण है, इसका यज्ञ पूरा करो, ऐसा कुछ करो मंत्र वंत्र बोल के कि सब को भी पूरा कर दो, ये मेरी आपको आज्ञा है। तो शुक्राचार्य ने, जो देवता दैत्यों के गुरु हैं, वो राक्षसों के गुरु हैं, वो राक्षस मरते ना तो उनको जिंदा कर देते वो वापस लड़ने के लिए देवताओं के साथ, ऐसे शुक्राचार्य। उन्होंने जो वाक्य कहा है श्रीमद् भागवत के आठवें स्कंद में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। उन्होंने कहा है कि भगवान हरि के नामों का कीर्तन करने से यज्ञ में और दुनिया में और किसी भी कार्य में जो भी दोष होते हैं, त्रुटियां होती हैं, वो सब पूरी हो जाती हैं, वो सब मिट जाती हैं, परफेक्ट हो जाती हैं। अभी कौन बोल रहा है? राक्षसों के गुरु बोल रहे हैं, उनको भी पता है कि सत्य क्या है, उनको भी उसके पता है। तो शुक्राचार्य ने फिर संकीर्तन करा के बलि महाराज के सौवे यज्ञ को भी पूर्ण कर दिया, परिपूर्ण कर दिया, मतलब भगवान के लिए अर्पण करने के लिए योग्य बना दिया उसको, पूर्ण फलित कर दिया उसको। तो हमारे और आपके जीवन में भी जो दोष होते हैं ना, त्रुटियां होती है, हम लोग उधर कीर्तन क्यों करते हैं? आप लोग ऑपरेशन कर रहे हैं अंदर, हम लोग बाहर कीर्तन करते रहते हैं। मैंने भी दो दिन किया, किस भाव से किया? कि आप लोगों का ऑपरेशन यशस्वी हो, आप लोगों के उंगलियों में ऐसी शक्ति भगवान दे कि सारे ऑपरेशन यशस्वी हो, किसी की भी आँख नष्ट नहीं होनी चाहिए या गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप कहेंगे कि हाँ 500 में से दो ऑपरेशन फेल हो गए, लेकिन जो दो जिसके फेल हो गए उसके लिए 100% फेल्योर हो गया ना, 100% फेल्योर, क्योंकि उसकी एक ही आपने हाथ लगाई और वो बिगाड़ दिया आपने, तो वो उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारे स्कोर में तो बहुत कम दिखता है वो, 500 में से दो ही, 4% नहीं, 0.4%, लेकिन सबको वो यश मिलना चाहिए, हम लोग कीर्तन करते रहते हैं। तो वही भाव है कि आप ऑपरेशन कर रहे हो या घर में सब्जी बना रहे हो या ऑफिस में काम कर रहे हो, उसके दोष त्रुटियां आपको नष्ट करनी है तो आपके भगवान के नाम के कीर्तन का सहारा लेना पड़ेगा, इतना शक्ति है उसके अंदर। इसलिए जब भी कीर्तन शुरू होता है ना, तो हमारा सारे स्विच ऑफ होने चाहिए और केवल कीर्तन में हमारा मन लगना चाहिए। क्योंकि देखो अभी आपने यहाँ पर कितने दिन बिताए, अभी आप 5वां दिन होगा ना आपका, आज 6वां दिन होगा शायद। 24 घंटे के दिन में कितना कीर्तन मिलता है आपको? एक राधा माधव की प्रवचन के होने के पहले मिलता है, उसमें भी हमारा वार्मिंग अप होने होते कीर्तन खत्म हो जाते हैं। हम लोग अभी आए हैं, अभी थोड़ा बोलेंगे, बोलते बोलते आ रहे जय प्रभुपाद हो गए, समाप्त हो जाता है वो, होता है कि नहीं ऐसे? तो कहने का तात्पर्य ये तो रोज यहाँ पर हो रहा है क्योंकि आप कैंप में आ रहे हो। जब घर पे रहते हो अपने मेदार रोड के अंदर रहते हो, दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, तो कितने समय में आप कीर्तन अटेंड करते हो? हफ्ते में, 15 दिन में या दिन में? मंदिर गए तो दिन में मिलेगा आपको, लेकिन मंदिर गए नहीं तो घर में तो कीर्तन होता नहीं है। भाई कौन है? पति काम पे गया, मैं खाना बना रही हूँ, बच्चे स्कूल गए, तो इतना आसान है वो, आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी होता नहीं है। आपने कितने दिन के बाद में, भाई साहब को जगाओ जरा, आपने कितने दिन के बाद में कीर्तन किया यहाँ पर आके? अरे वो तो उड़पी यात्रा में आए थे, तभी उसके कितने महीने के बाद में अभी कीर्तन किया? एक डेढ़ महीना हो गया उसको, और अगर बीच में कहीं यात्रा नहीं आई तो फिर वो अगले साल कीर्तन करेंगे। दिस इज अ फैक्ट, मतलब क्या उसमें कुछ टिका नहीं है, ये दिस इज अ रियलिटी। और हम लोग अपने आप को भक्त बोलते हैं, हमने दीक्षा लिया है, हम ऐसा है, 50 साल हो गए, 20 साल हो गए, जो भी कुछ है हमारे अंदर भी, अब झांक के देखेंगे ना, एनालाइज करेंगे ना उसको, तो मालूम पड़ेगा आपको कि 10-15 दिन में एक बार भी कीर्तन प्राप्त नहीं होता है। है तो बड़ा आसान, कभी भी बैठ के कर सकते हैं, किधर भी कर सकते हैं, गंदी जगह हो, साफ जगह हो, साफ की हुई हो, साफ न की हुई हो, जल के पास में हो, गटर के पास में हो, या शहर में हो, बगीचे में हो, किधर भी बैठ के कर सकते हैं। कोई समय का काल का बंधन कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी होता है क्या? वो नहीं होता है। इसलिए जब होता है तब सारे स्विच ऑफ करने चाहिए, सबसे पहले मोबाइल, उसके बाद में मन में क्या चल रहा है वो सब बंद, विचार तुरंत स्विच ऑफ, क्योंकि ये इतनी पावरफुल चीज़ है। इतने में से ही आपके सारे दोष त्रुटियाँ खत्म हो सकती हैं, इतने में से आपका जीवन का कल्याण हो सकता है। यज्ञा या संकीर्तना या प्रायर यजंती ही सुमेधसः, केवल कहते बुद्धिमान लोग ही कलयुग में कीर्तन का सहारा लेते हैं। उसको क्या कहा गया है? संकीर्तन यज्ञ कहा गया है इसको। यज्ञा या संकीर्तना या प्रायः यजंती ही सुमेधसः, जो सु मतलब मेधा मतलब बुद्धिमान, सुमेधा मतलब क्या? बहुत बुद्धिमान, हम कह सकते हैं सुदुर्लभ, सु जिसको लगाते हैं ना वो अधिक उसकी मात्रा बढ़ती है। तो ये संकीर्तन यज्ञ में जो भाग लेता है उसे बुद्धिमान माना गया है। श्रीमद् भागवत में कहा है ये ऋषियों ने, इतना महत्वपूर्ण वाक्य है ये। तो ये सब हमने क्यों बताया? इसलिए बताया कि संकीर्तन शुरू होने के बाद में किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, पढ़ना चाहिए, बोलो सब लोग बोलो, अरे माता जी आप बोलो, अरे प्रभु जी आप भी बोलो, अरे प्रभु जी आप भूल रहे हो, आप भूल रहे हो मदन बजाते हुए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बोलने को पढ़ना नहीं चाहिए। जैसे ये मृदंग बजा रहे हैं, हाँ तो मृदंग बजाना इम्पोर्टेंट है, अच्छी बात है, लेकिन मृदंग बजाना उधर ऊपर लेके जाना नहीं है। मृदंग जिसके लिए बजा रहे हैं वो संकीर्तन जो है उसमें भाग लेने से आपको ऊर्ध्व गति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए कीर्तन में प्रधान क्या होता है बताइए? हु इज द कैप्टन इन द कीर्तन? हरि नाम, गाने वाला नहीं, हरि नाम जो है ना जिसका उच्चारण किया जा रहा है संगीत में रूप में और भक्तों के साथ में, दो चीजें हैं उसके अंदर। संग कीर्तन मतलब संग से, संग में किया हुआ कीर्तन, अकेले भी गा सकते हैं लेकिन संग में करेंगे तो हजारों गुना लाभ होता है उसका। जैसे अभी समझे इसमें 50 लोग बैठे हैं तो आपको 50 गुना लाभ मिलेगा इस कीर्तन का, क्योंकि आपके साथ 50 लोग गा रहे हैं। अगर हजारों के संगम में बैठ गए तो हजारों में लाभ मिलेगा आपको, चार मिलेंगे तो चार के रूप में लाभ मिलेगा आपको, इतनी पावर है उसके अंदर। और वो हर एक को उतना ही मिलेगा, आप 50 मिलेगा आपको भी 50 का मिलेगा, क्योंकि आपके 50 लोग के बीच में बैठे हैं, सबका कलेक्टिव जो कीर्तन का भाव है वो एक आहुति अर्पण करने जैसा है कि आप भी आहुति अर्पण कर रहे हैं उसके अंदर। और वो आहुति का लाभ 50 लोगों का आपको सबको मिलने वाला है, कलेक्टिव बेनिफिट। तो कीर्तन का नायक कौन है? कैप्टन हरि नाम है, और बाकी मृदंग हारमोनियम करताल वो सब उसके सर्वेंट है। कभी कभी क्या होता है हम लोग इतना जोर से बजाते हैं कि कीर्तन का आवाज ही नहीं आता, कल मृदंग और वो ढांग ढांग ढांगे आवाज आते हैं, वो फेल्योर कीर्तन है। जिस कीर्तन में भगवान के नाम को प्रधान स्थान प्राप्त होता है, सर्वोच्च रूप में भगवान का नाम ही वितरित किया जाता है, वो सर्वोच्च कीर्तन है, बाकी सब असिस्टेंट है। सुंदर वाद्य, सुंदर करताल, सुंदर नृत्य, और उसमें एक नृत्य का महत्व बताया है कि भगवान के संकीर्तन में जब कोई व्यक्ति अपने अहम को छोड़कर नृत्य करता है उसके वश में भगवान हो जाते हैं, भगवान उसी के हो जाते हैं। मैं बोलूँगा मैं डॉक्टर हूँ, मैं कहूँगा मैं मोटा हूँ, जब मैं नाचूंगा तो लोग क्या कहेंगे, देख के हंसेंगे, या कोई स्त्री कहेंगे मैं तो वो बुढ़ी हूँ, मैं अगर नाचूंगी तो लोग हंसेंगे, ऐसे कई सारे संकोच होते हैं। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत फेमस व्यक्ति हूँ, मैं बहुत मंत्री हूँ इस देश का, तो मैं कैसे नाचूंगा? ये तो ये लोग नाचेंगे, सामान्य लोग नाचेंगे, विशेष लोग नाचते नहीं इसके अंदर। कई प्रकार की बाधाएं होती है कीर्तन में भाग लेने के लिए, लेकिन सारे अहंकारों को छोड़कर जो भगवान के कीर्तन में भाग लेता है, और एक बात है उसके अंदर भाग लेता है तो केवल भगवान की संतुष्टि के लिए ही नृत्य करता है। इसलिए नहीं कि मैं बहुत यंग और सुंदर आदमी हूँ तो मैं कुछ स्त्रियों को इम्प्रेस करना चाहता हूँ, या मैं बहुत यंग गर्ल हूँ कुछ पुरुषों को इम्प्रेस करना चाहती हूँ, या लोगों के वाह वाह या तारीफ या हरी बोल ऐसा चाहती हूँ, ऐसा कोई भाव नहीं उसके में। केवल मैं और भगवान, मेरी शरीर की हलचल और भगवान की संतुष्टि, बस यही इक्वेशन होना चाहिए उसके अंदर, उसमें भी समर्पण जरूरी है, तो वो व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है। और कैसा बनाया भगवान ने? कोई भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है, पढ़े लिखे हो तो भी ले सकते हो, अनपढ़ भी ले सकते हैं, धनी गरीब, रोगी, आरोग्य संपन्न, सुंदर, कुरूप, पढ़े लिखे, अनपढ़, सारे प्रकार के लोग, जितने विरोधी आप गिनते जाओ, सब लोग भाग ले सकते हैं। सुबह कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, दिन में कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, गटर के बाजू में कर सकते हो, महल में कर सकते हो, बगीचे में कर सकते हो, फूलों के बगीचे में कर सकते हो, गंदी जगह में कर सकते हो। और क्या महात्म्य उसका है, जहां पर भी ये कीर्तन होता है कृष्ण वहीं प्रकट हो जाते हैं। यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। कहां पर हो भगवान तुम? भगवान कहते हैं जहां पर मेरे भक्त एकत्र होकर मेरे नाम को पुकारते हैं वहीं पर मैं प्रकट हो जाता हूं। तत्र तिष्ठामि, वहीं पर रहता हूं मैं। मुझे अगर मिलना है आपको तो वहीं पर आओ, जहां मेरा कीर्तन हो रहा है, जहां मेरी कथा हो रही है, जहां पर मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं, जहां मेरे भक्त मेरी सेवा कर रहे हैं, वहीं हूं मैं। ना हम तिष्ठति वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं मिलूंगा शायद आपको, कभी गलती से आओगे तो नहीं मिलूंगा शायद मैं उधर, योगियों के हृदय में नहीं मिलूंगा। तो कहां मिलेंगे? जहां भगवान के भक्त मेरे भक्त मेरे को पुकार रहे हैं। यही संदेश लेकर जाइए, मुंबई जाइए, इंग्लैंड जाइए, दिल्ली जाइए, भगवान का नाम लेकर जाइए, निसंकोच जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। दो मिनट क्यों ना आप आए, बहुत खुशी की बात है। दो मिनट भी मिलेंगे ना तो भी वो जीवन के कल्याण का कारण बन सकते हैं। दो मिनट भी, एक मिनट भी, अगर दिल से आप एक मिनट भी सत्संग में बैठे तो भी आपका कल्याण हो सकता है। नहीं, शक्ति है उसके अंदर। साधु संग, सत्संग यानी कि मैं साधु नहीं हूं, लेकिन किस विषय में सत्संग कर रहे हैं हम लोग? सत के विषय में संग कर रहे हैं। सत विषय यानी भगवान का विषय, कोई भी कर रहा हो तो वो सत्संग है। वो सत्संग में अगर दो मिनट भी आप बैठेंगे, अरे आपको लग रहा है यहाँ पर अभी अपने साफ सफाई किया कितना गंदा था, जैसे ही कथा शुरू हुई भगवान की ना, नारद मुनि, हनुमान जी, अश्वत्थामा, काकभुशुंडी और व्यासदेव और शुकदेव और देवता सब आ जाते हैं। हम भले सो जाएंगे लेकिन वो आते हैं सुनने के लिए। समझो, समझो सब लोग सो गए, समझो और कथा चल रही है, वो रहेंगे वहां पर अदृश्य रूप में। कथाकार को निरुत्साही नहीं होना चाहिए। इतनी कथा इन महान लोगों को प्रिय है, हमारे लिए बहुत सहज उपलब्ध है, लेकिन उनके लिए कितनी प्रिय है वो। कहां कहां से आते हैं घूम घूम के। सबसे पहले हनुमान जी, जहां पर भी कथा हो रही है सबसे पहले हनुमान जी आते हैं वहां पर। और जितने भी तीर्थ हैं वो सब प्रकट हो जाते हैं, जितनी भी नदियां हैं वो सब प्रकट हो जाते हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी शास्त्र है व्यक्ति रूप, वो सब प्रकट हो जाते हैं, सब लोग बैठते हैं। इस तरह से कथा में एक है यूट्यूब में देखना लाइव, समझो आप नहीं हो तो ठीक है, लेकिन लाइव जब बैठते हो ना, लाइव मतलब एक्चुअल जाके बैठते हो, तो आपको के ना केवल कथा का लाभ होता है, लेकिन ये जो महान लोगों का मैंने नाम लिया उनका संग प्राप्त होता है, ये तीर्थों का नाम लिया उस तीर्थ में होने का लाभ होता है। एक जगह आप बैठोगे ना, समझो अभी आप भानोखर में बैठे हो, तो आप केवल भानोखर में ही बैठे हो। आप राधाकुंड में बैठे हो क्या अभी? नहीं हो। लेकिन अगर कथा में बैठे हो तो सारे तीर्थ वहां उपस्थित हैं, आप एक ही साथ सारे तीर्थ में बैठे हो कथा के माध्यम से। देखो आप कितनी बार, अभी आप इस समय कुंभ मेला में भी हो, क्योंकि सारे तीर्थ जो है ना वो प्रकट होते हैं इसमें व्यक्ति रूप में, सत्संग के जगह पर। ऐसे महती है उसकी, अनंत महती है उसकी। तो सत्संग का और संकीर्तन का लाभ लेने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है बताइए? आप ही बताइए, इतना महत्व तो आपको बता दिया। अभी आप बैठे हो सत्संग में, तो अभी इसके बैठने के बाद में क्या इंपॉर्टेंट है बताइए? यस, हाँ, ध्यान पूर्वक उसमें भाग लेना। एक लास्ट हमारा एक क्या है ना, कैच है, कैच कि इसमें आकर भी आप सो सकते हो या नहीं सो सकते हो, पूर्ण जगह हो, लेकिन आपका माइंड कहीं और है, किधर तो भी सोच रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, कंपनी में क्या हो रहा है, ऑफिस में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, फोन आया आपको, अरे घर में कोई भी ताला तोड़ रहा है आपका, आपका सीसीटीवी दिखा रहा है आपको, इधर हो सकता है ना ऐसे। तो आप यहां पर शरीर से होने पर भी आपकी आत्मा मन कहीं और हो सकता है, तो आप यहां है भी हो नहीं भी हो, लाभ नहीं हो रहा है आपको। इसलिए जहां पर हो वहीं रहो, और जहां पर हो वहीं रह के ध्यान पूर्वक रहो, अटेंशन के साथ रहो। जितना ध्यान आप करेगा उतना लाभ मिलेगा आपको, क्योंकि भगवान का धाम है। यहां पर जो मैं बोल रहा हूं ना, ये मुझे भी ये बोलने का, बंबई में ये बोलूंगा और यहां ये बोलूंगा, तो मुझे इस बोलने का 100,000 बार लाभ ऑटोमेटिक मिल रहा है, क्योंकि मैं इधर बैठा हूं। यही प्रवचन उधर करूंगा ना बंबई में, तो उसको 1 लाभ मिलेगा, और यहां बैठूंगा तो मुझे 100,000 बार लाभ मिलेगा उसका। वैसे आपका है, यही प्रवचन आप बंबई में सुनोगे तो आपको 1 लाभ मिलेगा, लेकिन ये धाम में बैठ कर सुनोगे 100,000 बार लाभ मिलेगा। मानो आपने 100,000 यात्रा कर लिया, 1 हरे कृष्ण का मंत्र का माला किया, तो 100,000 माला कर लिया। इसलिए 2 ही माला मत करना, 2 लक्ष माला हो गया ना, अभी क्या है, बहुत दिनों का 16 से डिवाइड करो, उतने दिन का माला हो गया मेरा। अभी बम्बई जाके छुट्टी लूंगा मैं थोड़े दिन के लिए, इधर 1 बार ही कर लेना, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है ना, वो आलसी नहीं होता है, वो बटोरता है, जितना हो सके उतना बटोरो, यहाँ पर भी बटोरो, बम्बई में भी बटोरो, छोड़ो मत कहीं, जहाँ मिलता है उतना बटोर के रखो, ये दिव्य ज्ञान है। हाँ, खर्च न छूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त जाए, ऐसा ज्ञान है ये। 100 रुपया नहीं है वो, 10 रुपये खर्च किया 90 रह गया, ऐसा नहीं है। कोई खर्च नहीं होता है उसका, कोई चोरी कर नहीं सकता है उसको। ये धन जो आपने अभी लेके गए, ट्रेन में सो गए, तो सारा आध्यात्मिक लाभ कोई चोरी करके ले गया, ऐसा नहीं होता है। कोई चोरी कर सकता नहीं उसका, और खर्च होता नहीं, उल्टा दिन दिन बढ़ते जाता है। ऐसा धन आप लेने के लिए यहां पर आए हो तो ले लो, बटोर लो उसको, अक्षय खाते में जमा करो उसको, कभी भी समाप्त न होने वाले खाते में जमा करो। यहाँ का खाता समाप्त होने वाला है, वहां का खाता जो है समाप्त होता ही नहीं कभी, जो उसमें जमा होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे संकोच मत करो, जहां पर भी जहीं भी जहां पर भी जिस जगह पर भी भगवान के नाम का उच्चारण होता हो, दिल से भाग लो उसके अंदर आप पूरे उत्साह के साथ। पता नहीं जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी, आगे वाले समय पर आप भगवान का नाम ले पाओगे कि नहीं पाओगे, कोई गारंटी नहीं है इसकी। मैं आपको बताता हूँ, मैं ना नासिक में यात्रा लेके गया था, शायद आप थे उसके अंदर, वो बेसमेंट के अंदर मैं कीर्तन कर रहा था, नीचे बेसमेंट की जगह पर सत्संग चल रहा था, और मैं उन दिनों बहुत हारमोनियम बजा के गाता था, अभी भी गाना चाहिए लेकिन अभी होता नहीं, टाइम नहीं मिलता उसको, करना चाहिए उसको। तो मैं ऐसे हारमोनियम लेके गा रहा था, और मेरी ऐसी एक आदत है कि मैं गाते गाते बीच में रुकता हूँ, हारमोनियम मृदंग बजते रहता है और मैं कुछ बोलता हूँ बीच में। तो मैं कह रहा था, पुकारो सब लोग पुकारो, बिना संकोच के पुकारो, पता नहीं आगे कह पाओगे कि नहीं पाओगे, पता नहीं जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी, अभी गा लो। ऐसे कह के मैं क्या बोला, पता नहीं अगली बार आप बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे। हाँ, और मैंने जब अगला मंत्र बोलने का कोशिश किया, मेरा गला ही बैठ गया खुद का, एक क्षण के अंदर मैं ऐसे बोल ही नहीं पा रहा था। म्यूजिक बज रही है, सब बज रहा है, और मैं खांस रहा हूँ। मुझे 5 मिनट लगे पूरे गर्म पानी वगैरह लेने के बाद में मैं महामंत्र उच्चारण कर सका। मैंने बोला देखो कैसे साक्षात्कार भगवान ने दिया, एक क्षण के अंदर जो मैं कह रहा हूँ मुझे ही लागू हो गया, पहले अगला मंत्र मैं बोल नहीं पाया। कितना दुर्लभ है ये, हमको लगा कि आसान है ना, क्या है ये किताब है ना, ये क्या है, बाजू में तो है, एग्जाम के लास्ट दिन पढ़ लेंगे, उसमें क्या है। नाइट मारेंगे हम लोग, एक बोलते थे नाइट मारेंगे, पूरा नाइट मारेंगे उस दिन। ऐसा हम लोग बोला करते थे, लेकिन उस रात जो पढ़ते हैं ना वो एग्जाम में याद नहीं आता कुछ, और मेरा भी वो भी अनुभव है, 12th में दिया मैंने अनुभव एक बार, लेकिन नासिक का अनुभव कभी भूल नहीं सकता मैं। इसलिए जब पुकार सकते हो तब पुकारो, जब कोई और पुकार रहे हैं उसमें अपना सुर मिलाओ, उसमें दिल लगा के अपने आप को समर्पित करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हम जगह पर आए हैं, बहुत ही सुंदर स्थान है ये, इसका नाम है भानुखर। भानो यानी वृषभानु महाराज और खर यानी खिरक, जलाशय, सरोवर, तालाब आप बोल सकते हैं। और ये विशेष करके क्या है, जल महल है ये, जल महल, ये जल के अंदर बनाया हुआ महल है। यहाँ पर राजा रानी आके बैठते हैं, जब चाहे उतरते हैं वहाँ से, उतरने का है ना प्राइवेट इंतजाम, स्नान करते हैं, दोपहर के बैठ के फिर हवा खाते हैं, जैसे ऐसे बनता है ना रास्ता, बहुत हवा बहती रहती है उसके अंदर, तो गर्मी के समय में आके बैठते हैं। राजस्थान में भी ऐसा ही है, तालाब के बीच में जल महल बहुत फेमस, बोट से जाना पड़ता है वहाँ पर, बोट से महल में प्रवेश करते हैं, फिर मेवा खाते हैं, मिठाई खाते हैं, बैठकर आनंद लेते हैं, हवा खाते हैं। जल महल, ये वृषभानु महाराज का जल महल है, उनका प्राइवेट कुंड है ये, पब्लिक कुंड नहीं है। कितना सुंदर है देखो, अभी तो क्या कहें, अभी तो जल महल नहीं, कबूतर खाना हो गया, वो कबूतरों का निवास है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर राधा रानी आकर अपने सहेलियों के साथ में स्नान करती हैं। तो लीला ऐसी है कि राधा रानी एक बार अपने सहेलियों के साथ यहाँ स्नान कर रही थी, तो आप जानते हैं ना, जब युवा अवस्था में जब लड़कियाँ जब पानी में जाती, तो कितना लड़के या लड़की हो कोई भी हो, कितना आनंद लेते हैं, पानी उछालते हैं, हंसते हैं जोर जोर से, और पानी का ना एक स्वभाव होता है, आप कितने भी ऐसे उदास रहेंगे ना, पानी में जाएंगे ना तुरंत हंसने लगेंगे, तुरंत ही पानी का शरीर में चेहरे पे छिड़कावा किया तुरंत फ्रेश है ना। वैसे मैंने और भी देखा है, जब संकीर्तन होता है ना, तो संकीर्तन जो हो रहा है पर लोग नाच रहे जोर जोर से, और बाद में कोई लेट आता है अंदर से, ऐसा ले आते ही हंसने लगता है लोगों को देख के। कभी भी देखो आप, लेट आने वाले कर संकीर्तन में एंट्री करने वाले लोगों का चेहरा देखो आप, ऐसा गंभीर चेहरा एकदम हंसते हुए हो जाता है उसका। वैसे ही जल का भी हिसाब किताब है, जल का स्पर्श होते ही ऐसा एकदम उल्लास उत्साह आ जाता है। आपने अनुभव किया होगा ना, कितने भी ठंडे ऐसे परेशान हो गए आप, जल में प्रवेश करने से तुरंत आनंद हो जाता है। तो वैसे ही सखियां आनंद ले रहे जल में, उछाल रहे पानी इधर उधर, अरे अभी का जैसा पानी नहीं, वो तो स्फटिक मणि जैसा पानी हुआ करता था, स्वच्छ, राजहंस घुमा करते थे उसके अंदर, सुंदर हजारों पंखुड़ियों के कमल खुला करते थे उसके अंदर, मधु जो है ना भंवरे वो गुंजारव करते थे, अपना सुंदर गीत गाया करते थे। क्या कहें वर्णन भगवान के समय का, एक एक वस्तु जो है ना, अतः एक फॉर एक जब ध्यान सुनिए, ऐसे सरोवर में कमल खिले हुए हैं अलग अलग रंग के, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इतने विविध प्रकार के रंगों के कमल खिलते हैं, हजारों पंखुड़ियों के बड़े बड़े, कभी कभी कमल इतने बड़े होते हैं आप उसमें बैठ सकते हैं, उसके अंदर आसन है बीच में फू के सरों का, अभी कल्पना ही कर सकते हैं, शास्त्र पढ़ सकते हैं, और जब योग्य हो जाएंगे वहाँ जाएंगे तो देखने को मिलेंगे, तब तक सुनना है कम से कम। तो हवा जो है ना, हवा वायुदेव, उनकी क्या सेवा है यहाँ पर, उनकी भी सेवा है। तो वायुदेव अपनी लहर ऐसे निकाल रहे हैं जल के ऊपर से, जल के ऊपर क्या होता है, 4 फीट तक बाष्प होता है, ठंडक होती है, ऑक्सीजन का प्रमाण ज़्यादा होता है जल के ऊपर के 4 फीट की जगह पर। तो वो सुंदर जो बाष्प है उसमें हवा चलती है, बाष्प को लेकर फिर आगे चलती है, फिर सुंदर पुष्प के सुगंध वाले जो है ना पुकेसर, जो सुगंध पैदा करते हैं, वो सुगंध को लेकर भी जाते हैं, और मंद मंद क्या क्या भी ले लिया, क्या 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 लिया उसने वायु ने बताइए, क्या क्या लिया, बाष्प लिया ठंडक वाला शीतल, और क्या लिया सुगंध, और वो खुद मंद मंद जा रही है, 3 चीज़ें उसके अंदर, मंद मंद प्रवाह, सुगंध और शीतलता, ये तीनों को लेकर वो जाकर कृष्ण राधा रानी और गोपियों के शरीर को स्पर्श करते हैं, उनको बड़ा आनंद देते हैं। कभी आपने मंद मंद हवा का अनुभव लिया है, ऐसा लगता है कि बैठे ही रहे बस, गाल पे लग रहा है, इधर शरीर पे लग रहा है, लगते रहे, इतना अच्छा अनुभव होता है। हमारे गुरुदेव ने मुझे एक बार बताया था, वृंदावन में हम दोनों चल रहे थे ऐसे बगीचे में, अचानक वो रुक गए, उन्होंने कहा विश्वरूप रुको यहाँ पर अभी आप, रुको और आंख बंद करो और केवल अनुभव करो। तो वो शीतल मंद मंद हवा आ रही थी, शरीर को सूख कर जा रही थी। बहुत देर तक हम दोनों ऐसे आंख बंद करके खड़े थे ऐसे। कितना अमूल्य क्षण था वो। वृंदावन धाम, गुरुदेव का सानिध्य, उपवन में वृंदावन की हवा बह रही है, इतनी शीतल सुंदर मौसम है, बहुत सुंदर मौसम है। कई क्षणों तक, कई मिनटों तक हम आंखें बंद करके रहे, फिर आंखें खोले तो गुरुदेव ने कहा कि वृंदावन में जब हवा आती है तो कृष्ण आपको आलिंगन दे रहे हैं, कृष्ण इज एम्ब्रेसिंग यू। तो उसके बाद में मैं जब भी वृंदावन में आता हूँ और जब भी हवा आती है तो मुझे लगता है कि कृष्ण मुझे आलिंगन दे रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है ना, वो तो सत्य है, परम सत्य है। तो वैसे ही स्थिति यहाँ पर है, मतलब सूर्य हो या वायु हो या चंद्र हो या कोई भी देवता किसी प्रकार की हो, अपनी अपनी सेवा करके सारे ब्रजवासियों को, कृष्ण राधा रानी को, सबको प्रसन्न करना चाहते हो। हर प्रकार के बादल भी हो ना, ऐसे मंद मंद गड़गड़ाहट करेंगे और मंद मंद छिड़काव करेंगे। ऐसा भी नहीं कि आप भाग जाएंगे इतनी बारिश आ रही, आप उसमें ही रहेंगे, छिड़काव होते रहेगा सुगंधित जल का आपके ऊपर, आप उसमें ही लीला करते रहेंगे। सब जितने भी इस प्रकृति में वस्तुएं हैं, दिखने वाले या अदृश्य, दिखने वाले पेड़ है समझो, पंछी है, अदृश्य हवा है या और कोई सूरज की किरण ऊपर से आकाश, सूक्ष्म और स्थूल प्रकार से सब जितने भी व्यक्ति यहाँ पर है वो सब भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो ऐसे सुंदर वातावरण में जहाँ पर सब लोग जुटे हुए हैं इनको प्रसन्न करने के लिए हर तरह से, है ना, बाय एवरी मीन्स टू प्लीज राधा एंड कृष्णा एवरीबॉडी। तो वो स्नान कर रहे हैं इसमें सुंदर जल में। तो उतने में वहाँ से कृष्ण आते हैं, नंदगांव से, नंदगांव उस तरफ है ना, उधर से आते हैं, देखते किनारे में खड़े होकर बहुत देर देखते रहते हैं। इतनी सुंदर राधा रानी, इतनी सुंदर गोपियाँ हैं, जल कीड़ा कर रहे हैं तो देखते हैं। वो फिर ललिता को ऐसे जनरली पूछते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपको पूछ रहे हैं, आपको जनरली पूछते हैं वो लड़की कौन है, राधा रानी को दिखा कर इशारा करके पूछते हैं कि ये कन्या कौन है, जैसे कि पता ही नहीं है ना। बहुत होशियार है कृष्ण हमारे, ऐसे नाटक करते हैं कि भाई पता ही नहीं कुछ ऐसे। तो ललिता देवी हमारी बहुत तेज है, वो उसका दिमाग कब सटक जाए कह नहीं सकते। कभी कभी अच्छी रहती है, कभी कभी पता नहीं कैसा जवाब दे देती है। तो ये इतना सिंपल सवाल पूछा कि ये कन्या कौन है, तो या तो आप दुर्लक्ष करो या तो जवाब दो। लेकिन उसने क्या कहा, तुम्हें क्या करना है, आए कहाँ से पता नहीं, ये संस्कार है तुम्हारे, चले जाओ यहाँ से, क्या करना है तुमको पूछ के कौन हो तुम पूछने के लिए, चले जाओ यहाँ से, ऐसे कुछ एंशन बक दिया उसके सामने एकदम। अभी आपने सहजता से पूछा कौन होगा, ये कौन है, ऐसा गर्म जवाब मिला ना तो एकदम सहमे से हो गए वो बेचारे। तो राधा रानी को ना वो बहुत भोली है, राधा रानी के बारे में पूछा गया है, राधा रानी को ये उत्तर सुनकर बड़ा अच्छा नहीं लगा। उसने ललिता को कहा कि क्या जरूरत थी इतना चिल्लाने की, अगर तुमको पसंद नहीं आया उसका प्रश्न, दुर्लक्ष करते उसको, अपना अपना खेल खेल रहे हो, खेलते रहो। लेकिन उसको इतना कठोर वचनों में जवाब देने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत लोग आते हैं, बहुत शरारत करते रहते हैं, उनको मैं जानती हूँ कैसे उनका व्यवहार करना है, सब जानती हूँ मैं। तो फिर वो राधा रानी और नाराज़ हो गए कि मैं तुमको बता रही हूँ कि तुमने ठीक नहीं किया तो तुम मुझे उल्टा जवाब दे रही हो, जा मैं तुमसे नहीं खेलती। ऐसे करके वो अपने दो तीन लोगों को, सहेलियों को लेकर थोड़े साइड में चली गई, अपना एक सर्कल बनाया और वहाँ पर स्नान करने लगी। और यहाँ पर ललिता देवी और दूसरे साइड, उन्होंने कहा ना कि अभी नहीं करना है मुझे आपसे बात, तो वो अलग हो गए। तभी बेचारे खड़े हो, इतनी डांट खाकर भी खड़े देख रहे हैं, अचानक वो ना पानी में डाइव मारते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ना, अभी आप यहाँ खड़े हो, उधर से डाइव मारते हैं पानी में, इधर बीच में कहीं राधा रानी, अंडर वाटर तैर के आते हैं, मतलब आपने डाइव मारा लेकिन बाद में गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गए। तो तो वो ना पानी के नीचे से तैरते हुए तैरते हुए तैरते हुए राधा रानी के चरणों के पास में आते हैं, राधा रानी के चरण पकड़ के सर पे लगाते हैं। तो अभी समझो आप अभी स्नान कर रहे हो, अचानक किसी पकड़ लिया पाओ आपका, तो आपको क्या लगेगा, अरे भाई मगरमच्छ ने पकड़ तो नहीं लिया, मछली तो नहीं खा जा रही है, एकदम चौंक गई वो एकदम। और चौंक गई थी उतने में वो छोटे सर्कल में जहां राधा रानी स्नान कर रही ना उसके बीच में ज़ूम करके प्रकट हो जाते राधा रानी के मुंह के सामने, ऐसे ऐसे राधा रानी है, इनके चरणों का स्पर्श कर लिया ऐसे प्रकट हो जाते, अचानक एक क्षण रहते हैं तुरंत वापस गायब हो जाते नीचे से, बस कहानी खत्म। इतनी लीला है यहां पर, हाँ चौंका देते राधा रानी को, राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है, मतलब चौंक जाती है लेकिन उनको बड़ा थ्रिल का अनुभव होता है, वाह क्या बात है, हरी बोल। इस स्टोरी का प्रमाण है शास्त्र में जो यहां पर हुआ है। यहां पर ना ऐसे ही सिंपल लीला होती है, कभी कभी अनोखी लीला होती है, भाई गोवर्धन को उठा लिया, अरे अद्भुत कार्य कर लिया, लेकिन आमतौर पर यही लीला होती है। क्या लीला हो रही है, कृष्ण बलराम दोनों अभी अभी जन्म हुआ है, अभी कुछ ही महीने के हैं, रेंग रहे हैं ऐसे घुटनों और पेट के बल से ऐसे जा रहे हैं, तो उस पर दो दो घंटे के गीत गाए जा रहे हैं, कैसे रेंग रहे हैं, कैसे ठुमक रहे हैं, कैसे कुंडल हिल रहे हैं, कैसे घुंघरू की आवाज आ रही है, कैसे कमर काचने की आवाज आ रही है, कैसे मैया देख रही है, कैसे बाबा देख रहे हैं, कैसे सब लोग देख रहे हैं, फिर खड़े हो जा रहे हैं, फिर खड़े हो के वो इतने से है ना, वो इतने से हैं, इतने बड़े बाबा हैं, तो बाबा जी की बाबा की धोती पहन पकड़ कर खड़े हो रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि ये हमारे बाबा नहीं है, किसी और कौन कोई और व्यक्ति है, तो एकदम सहमे हो जाते हैं, फिर छोड़ते हैं और भागते हैं तो गिर जाते हैं, फिर उसी पेटों के बल भाग भाग के मैया के पास जाते हैं और धो धो भाग के मैया की गोद में जाते हैं, मैया तुरंत उसको स्तनपान कराती है, तो डर गया ना थोड़ा सा कि पता नहीं बाबा समझ के किसी और की धोती को पकड़ा। इस पर इतना सुंदर गीत गाया जा रहा है, दो घंटे के लिए बार बार उसका वर्णन हो रहा है, मणिमय आंगन नंद के खेलत दो भैया, खेलत दो भैया, अरे रुन झुन बाजत खेलत दो भैया। सुंदर गीत गाते हैं, कोई सूरदास ने लिखा है, कोई परमानंद दास ने लिखा है, कोई चित्त स्वामी ने लिखा है, कोई और किस संत ने लिखा है, यही जीवन है यहाँ का, दिन रात भगवान को याद करना। क्या है ब्रजवासियों का जीवन, फॉर एग्जाम्पल यशोदा देवी का जीवन क्या है, वो अभी मंथन कर रही है, मन में क्या विचार है उसका, टीवी में कौन सा सीरियल आ रहा है, 6:30 बजे कौन सा सीरियल आएगा, मेरा दो मिस हो गया बीच में, अभी मैं देखना चाहूँगी, ऐसा विचार कर रहे हैं वो नहीं, केवल कृष्ण कृष्ण और कृष्ण, कृष्ण के लिए ही करना है, कृष्ण के लिए ही देना है, कृष्ण के लिए सांस लेना है, और उनके इतने इतने कंगन पहने हुए हैं, जब मंथन कर रहे हैं ना वो बज रहे हैं, बहुत सुंदर उसका वाद्य हो रहा है, सुंदर एकदम सुंदर, कमर में जो पट्टा पहना है वो भी छुम छुम छुम, पूरा शरीर हिल रहा है ना, इसलिए अभी ऐसा कर रहे हैं तो पूरा हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है, कुंडल भी हिल रहे हैं, किसी तरह से फूल लगाए वो भी हिल रहे हैं, कुछ गिर रहे हैं कुछ हिल रहे हैं, और वो गीत गा रही है, कल जो लीला हुई थी जो उसने देखी है अपने आंखों से वो आज खुद गीत बनाकर गाई जा रही है, और आज का दूध दही का मंथन हो रहा है, और सेवा भी उसके लिए है, उसके लिए मक्खन बनाया जा रहा है, यही उनका जीवन है। हर रोज सब गोपियां, यशोदा की बात मैंने खाली एग्जाम्पल दिया आपको, सभी गोपियां जो भी घर में दूध निकाल रही है या दूध दोहन कर रही है या मंथन कर रही है या दही जमा रही है या और कुछ मिठाई बना रही है, वो सारा करते समय केवल कृष्ण के ही लीलाओं का गीत गाए, इतना सुंदर जीवन है, मन में भी कृष्ण है, तन से भी उसकी सेवा हो रही है, हर चीज से उसकी सेवा हो रही है, उसका ही ध्यान है, उसका ही चिंतन है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कैसे भूल सकते हैं, जो दिन रात नींद में जागृति में काम करते समय उठते बैठते सोते जागते उन्हीं को याद कर रहे हैं, उन्हीं की चिंतन कर रहे हैं, कैसे भगवान उसको भूल सकते हैं ऐसे व्यक्ति को। हमारे मन में एक साथ में एक माला में 108 मणि के अंदर 1000 विचार आते हैं बीच में, और कहाँ से कहाँ मन पहुँच जाता है। शुरुआत तो यहाँ गया था, मन पहुँच गया अमेरिका में। अरे एक माला हो गई, आगे करो 108 में कब आगे हो गया, तो एक मणि आगे करो, हो गया अपना काम। कितना अच्छा ना, समझा भी नहीं कैसा एक माला हो गया ये हमारी स्थिति है। और वहाँ पर इतना चिंतन है, जब कर रहे हो नहीं कर रहे हो, केवल उनका ही संपृक्त चिंतन, मतलब कैसा 100% चिंतन है। और ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं इसमें, इतना सुंदर भाव प्रकट होता है, उत्सुकता प्रकट होती है, प्रेम प्रकट होता है, आतुरता प्रकट होती है, तड़प प्रकट होती है उसमें, सूक्ष्म भाव प्रकट होते हैं छोटी छोटी बातों में। जैसे यहां पर एक और एक कुंड है आगे, और एक कुंड आगे इसमें, उसका नाम है प्रेम विवल कुंड। क्या बताया मैंने अभी, विवल का अर्थ जानते ना आप लोग, विवलता मतलब भाव विभोर होना, भाव विभोर हो जाना। अभी राधा रानी यहां से निकली हुई है, मैया ने कहा है कि अभी आज आपको देवी का पूजन करना है, आज के दिन देवी का पूजन करना है, आपको देवी का पूजन करना है। तो वो जा रही है और देवी ढूंढ रही है, कहाँ देवी है, तो नहीं मिल रही है उनको, तो ढूंढ रही है, अभी मिलेगी। तो वहां से कृष्ण आते हैं नंदगांव, वही रास्ते पे ना, वो तो क्या है कहाँ वो जा रही है उसके पीछे पीछे जाते रहते हैं, तो बीच में पकड़ते हैं, कहाँ जा रही हो। नहीं, मैया ने कहा देवी की पूजा करनी है। बोला ठीक है, तो क्या देवी तो इधर ही है, ऐसा कहते हैं जिस जगह मिलते हैं ना, ये यहाँ से आ रही है उसके दाहिने में, वो वहाँ से आ रहे उसके बाएं में, बोलो तो मैं वहीं से आ रहा हूँ, उधर ही देवी है। तो बेचारी बोली वाली राधा रानी तुरंत चले जाती है, और पूरा वो वन ढूंढ के आती है, किधर भी देवी नहीं है। फिर मेन रोड पर आती है और कहीं ढूंढने के लिए, फिर भी मिल जाते हैं, क्या हुआ कि नहीं पूजा, किधर हुआ, देवी ही नहीं है, आपने कहा तो देवी है। अरे मैं अब भी जाके आया दर्शन करके, कहाँ ढूंढ रहे हो, जाओ दोबारा ढूंढो, उधर ही तो है, मैं जाके अब भी तो आ रहा हूँ वहां से। तो बेचारे दोबारा गई अंदर, दोबारा गई तो दोबारा भी दर्शन नहीं हुआ देवी का। जिस जगह पहले देखा उधर भी देखा, जिस जगह नहीं देखा था उधर भी देखा, किधर भी देवी का नामो निशान नहीं है। फिर आई बाहर, फिर पूछते हैं हो गई पूजा, कैसे होगी पूजा, अभी तो दर्शन ही नहीं हुआ है तो पूजा कैसे होगी। अरे मैंने कहा ना उधर ही तो है, जाओ। बिचारी तीसरी बार भोली भाली राधा, तीसरी बार जब पहुंचती अंदर ना, तो जहां पर अनेक बार देख चुकी है उसमें से एक जगह पर दिखाई पड़ती देवी, अरे तुरंत खुश होते, चलो फाइनली कोई ना, कुछ भी हो कैसे भी हो, जादू हो चमत्कार हो टोना हो, आई डोंट नो, देवी मिल गई ना, पूजा करना है तुरंत। अपना कैसा तुरंत वो बाती निकाला और रखा उसके ऊपर, मैचेस निकाला थोड़ा सारा रेडी करके आरती शुरू कर दिया। राधा कृष्ण प्राण मोरा, ऐसे हम करते हैं। अभी राधा रानी खुद पूजा कर रही है तो देवी की पूजा की जा रही है। चलो धूप हो गया, रख गया, अभी दीपक जो है ना ऐसा दीपक लेकर अभी आरती उतारी जा रही है। हाँ, तो जब हम आरती उतारते क्या करते हैं, ऐसे करते हैं नहीं, जिसकी आरती उतारी जा रही है उसी को देखते हैं। और हमारी पूजा में और एक नियम होता है कि चरणों में 4 बार घुमाना होता है, उसका एक मंत्र होता है। नाभि में 2 बार घुमाना होता है, उसका एक मंत्र होता है। मुख कमल पे 3 बार घुमाना होता है, उसका एक मंत्र होता है। और पूरे शरीर में 7 बार घुमाना होता है, उसका भी एक मंत्र होता है। 4, 2, 3, 7 ऐसे भरो। ध्यान से जिस विभाग को आप पूजित कर रहे हो चरणों का, तो चरणों पर ही ध्यान है आपका पूरा। इस तरह से हो रहा है, जब मुख कमल में 3 बार हो रहा है तब देवी है ना, आंख मीचती अपना, समझ में आया आपको, कुछ समझ में आया। देवी अभी तक नहीं, नहीं ऐसा नहीं तो इसको बड़ा आश्चर्य होता है, अरे देवी ने आंख मीच दिया, तो उसको हंसी आती है, तो देवी भी हंसती है, अरे तो विचित्र देवी है। बाद में समझता है देवी वही कोई नहीं है, कृष्ण है स्वयं। देवी का रूप तत्क्षण धारण करके खड़े हो गए उधर, इसकी आतुरता देखकर। तो ये जो अभी क्या हो गया, आपको कैसे भावना आई इसके अंदर, सोच समझ लो, आपकी देवी राधा रानी ने जब वो पूजन कर रही है और अचानक उसके मग्नता में, उसके ध्यान में देवी आंख मीचती है और हंस देती है, तो उसको क्या भावना मन में आएगी? आप बताओ, क्या क्या लगता है? 1, 2, 3, 4, 5 बताओ। चौंक गए ना, वो आश्चर्य हुआ उनको, और एक आश्चर्य हो गया और अचंबा हो गया, और क्या हो गया? हाँ, क्वेश्चन मार्क। अरे ऐसे कैसे हुआ? एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, और क्या हुआ बताओ? हाँ, नाराज क्यों हो गए? खुश हो गई। अरे अच्छी क्या करते भक्ति तू? इतना अद्भुत अनुभव आया तो नाराज हो जाएगी वो। अरे उसको आनंद हुआ, आश्चर्य युक्त आनंद हुआ, वाओ, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा हो गया, और चौथा क्या? प्रसन्न हो गए, खुश, वेरी हैप्पी। कैसे अद्भुत रूप में कृष्ण मिले। तो उसके बाद में पता है क्या हुआ? वो आनंद अचंबा जो भी कुछ हुआ, उसमें आंखों में से आंसू आए प्रेम के। तो वो राधा रानी के आंखों में आंसू आए, तो वो देवी बने हुए कृष्ण के भी आंखों से आंसू आए। होता है ना ऐसा कभी कभी? आपका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन यहां कोई रो रहा है तो आप भी रोते हो। कंटेजियस डिसीज बोलते हैं उसको, संसर्ग निजन रोग। किधर भी कोई रोता होगा, आपको भी रोना आता है तुरंत। तब ये दुख के आंसू नहीं है, ये तो खुशी के आंसू है, चमत्कारिक आंसू है ये। तो ये भी आंसू भार है, वो भी आंसू भार है, दोनों को इतना आनंद आता है कि अरे ऐसे अद्भुत तरीके से आप कृष्ण ने आज मुझे दर्शन दिया। अरे उनके दोनों के आंसुओं से कुंड बना, वहां पर पूरा सरोवर बना, प्रेम विवल कुंड। दोनों प्रेम से विवल हो गए, भाव विभोर हो गए, और एक कुंड बना, प्रेम विवल कुंड। अभी एक भावना से यहां पर हो गया, कैसे? आश्चर्य, प्रश्न, भावना, आनंद, प्रसन्नता, और फिर आनंद अश्रु, ये सब भय के कुंड बना। अभी और एक जगह यहां पर है, प्रेम सरोवर, बहुत विशाल अष्टकोणी कुंड है। अभी वो कभी कुंड बना नहीं है, अभी प्रेम वन है, वो वन, हाँ, जैसे सिचुएशन वन की है, उसमें राधा और कृष्ण बैठे हुए हैं, सखा लोग भी हैं वहाँ खेल रहे हैं, और सखियाँ भी हैं वो भी अपनी जगह खेल रहे हैं, लेकिन एक जगह राधा और कृष्ण ऐसे बैठे हुए और देख रहे हैं एक दूसरे को। तो आंखों की गहराई में देख रहे हैं, वो इनके और ये उनके। कैसा है ना, जब बहुत प्रेम होता है ना, तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने अनुभव किया कभी? अरे हाँ बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है? सब लोग ने किया है, लेकिन वो कुछ समय के लिए था, बाद में फिर पता नहीं क्या हो गया उसको। तो वो कैसे होता है ना, हम ट्रेन में जाते हैं ना ऐसे, तो ट्रेन में कैसे होते हैं, तीन तीन सीट होती है सामने, तीन तीन सीट। तो कोई नई मैरिज किए हुए कपल ला के अपने सामने बैठ जाते हैं, उनका सीट है उधर 22 और 23, और आप अपोजिट साइड 27 नंबर पर आपका है, आप बैठे हो। तो वो लोग दोनों ना कई घंटे बात करते हैं, लेकिन कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। आप सोच रहे थे क्या बोलते होंगे, क्या बोलते होंगे, और बोल रहे हैं, दोनों को बराबर समझ में आ रहा है क्या बोल, लेकिन बाजू वाले को एक अक्षर भी सुनाई नहीं पड़ रहा। तो ऐसे कहते हैं विद्वान लोग कि जब बहुत प्रेम होता है ना, तो कभी कभी शब्दों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जब प्रेम समाप्त होता है तो आवाज बढ़ते जाता है, फिर पास में बैठ के भी जोर जोर से चिल्लाते हैं, फिर भी सुनाई नहीं पड़ता है। इज इट नॉट ट्रू? व्हेन हार्ट्स आर गॉन वेरी फार, जब हृदय बहुत दूर चले गए, जुदा हो गए, तो इधर बैठ के चिल्ला रहे, तुमको समझ में नहीं आता है क्या? तो सुनाई नहीं पड़ता है उसको, वो अपना ही बोलते जाता है, ये अपने ही बोलते जाते हैं, किसी का सुनता नहीं है। और जब प्रेम होता है तो केवल कुछबुस करने से भी सुनाई पड़ता है, सब दिल की बातें पता चलती है। और उसके बाद में क्या होता है, बोलने की जरूरत नहीं, केवल आंखों से ही सारे इशारे हो जाते हैं, सारी भावनाएं व्यक्त होती हैं, अलग अलग प्रकार की, विविध प्रकार की भावनाएं केवल आंखों से व्यक्त होती है, प्रेम की भाषा ही ऐसी है। तो भी राधा कृष्ण बैठे हुए हैं, उनके मन में कोई भौतिक इच्छा विच्छा है ना, कोई हमारे सॉरी तो प्रेमी लोग हैं, भगवान और भगवान की प्रेयस ही है वो, कोई भौतिकता है ही नहीं, शरीर का लोभ नहीं है उसके अंदर, कोई सौंदर्य का लोभ नहीं है, निर्भेल प्रेम है उसके अंदर। तो आंखों की गहराई में प्रेम व्यक्त कर रहे हैं दोनों, अपने नेत्रों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं, मग्न हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहे बाहर क्या है, दोस्त कहाँ हैं, दोस्तियाँ कहाँ हैं, फ्रेंड्स कहाँ हैं, कुछ पता नहीं है, केवल मेरे इष्ट मेरे सामने हैं और मैं उनका दर्शन कर रही हूँ और कर रहा हूँ। तो ऐसे बैठे ना, तो एक भवरा ऐसे घूमने लगता है, तो डिस्टर्ब हो गया ना, तो उन्होंने फिर भी अपना जो नज़र है ना वो उसको चेंज नहीं किया। और कृष्ण ने मधुमंगल को कहा, मधुमंगल को जहाँ पर भी था वो देख के नहीं कहा, ऐसे ही उसको राधा रानी को देख रहे हैं, ए मधु जरा आना इधर और मधु को हटा देना, क्योंकि भवरे का नाम ही मधु है, मतलब होता है ना उसका भी एक मधु नाम है, मधुमक्खी जो कहते भी, उसका नाम मधुमंगल है, भगवान के सखा का नाम है, बड़ा मोटा है, ब्राह्मण है वो, उसको बुलाते हैं। तो मधु आता है और ये वैसे ही है, उनकी पोजिशन सेम है, तो बीच वाले भवरे को हटा देता है, वो दूर कर देता है उसको, और क्या कहता है, मधु चला गया। अभी कृष्ण का नाम भी मधु है, तीन मधु हो गए ना, एक भवरा मधु हो गया, एक मधुमंगल मधु हो गया, एक स्वयं कृष्ण जो बैठे हैं वो भी मधु है, मधुसूदन नाम है उनका। तो राधा रानी को ऐसे सुनाई पड़ा कि मधु चला गया, तो मन में ऐसी भावना हो गई कि वो छोड़ के चले गए मुझे, वो मेरे साथ में थे या जाएंगे अभी, समझो अभी घर की बेटी की शादी है, तय हो चुकी है इस तारीख की होने वाली है, अभी वो गई नहीं है, फिर भी रोज मार होती है ना, रोती है ना, क्योंकि जाएगी ना अभी, वो जाएगी, अभी चार दिन बचे हैं, अभी तीन दिन बचे हैं, अभी एक दिन बचा है, अभी आज जाएगी, अभी सुबह जाएंगे और शाम को विदाई होगी। तो ये एंटिसिपेशन मतलब कि आने वाले दुख को सोचकर अभी से रोने लगता है, बच्चा अमेरिका पढ़ने को जा रहा है तो रोज मार हो रही है, आठ दिन है अभी फ्लाइट का टिकट, सात दिन बच गए, छः दिन बच गए, अभी जाएगा, फिर रात में एयरपोर्ट में बहुत रोएंगे फूट फूट कर, जा रहा है अभी। तो वैसे ये इस प्रकार का एक दुख है ये, कि अभी गए होंगे शायद या जा चुके, उसमें रोने लग रहा राधा रानी, तो सामने ही बैठे हैं, तो कृष्ण को भी देख के रोना आता है उसमें, तो कृष्ण को रोते देखे वो अब और रोने लगती है पहले वो रोई, उसको देखकर कृष्ण रोए, कृष्ण को रोते हुए देखकर वो रोई, और उसको देखकर कृष्ण रोए, और दोनों रोते रहे, फिर वो एक कुंड बन गया प्रेम सरोवर। वो कुंड में अचंबा है, आश्चर्य है, ये कुंड में आने वाले विरह की भावना है, और प्रेम सरोवर बना, पहले प्रेम वन था खाली, सरोवर बना, बड़ी अद्भुत जगह है वो, बहुत उत्कट जगह है। अगर कोई अश्रद्धालु की कथा सुनेगा ना, अरे क्या मूर्ख लोग हैं, क्या कथा सुन रहे बच्चों की ये रोया वो रोया पानी बढ़ गया, कैसे हो सकता है ये, हो सकता है क्या ऐसे, कुछ भी भक्त हैं ये, भगवान के भक्त इतने भावुक होते हैं ना, बुद्धि भी घर में पार्किंग करके आते हैं कथा में, मतलब समझे ना, जो बुद्धि है ना भगवान ने दी हुई उसको घर में ही पार्क करके आते हैं, और अतर्क यानी कि लॉजिकलेस लोगों बातों को सुनते हैं और वाह वाह करते हैं, और वो भी बहुत ही कभी रोते भी हैं, कभी हंसते हैं, कभी क्या, मतलब बुद्धि नाम की चीज़ ही नहीं है भक्तों के अंदर, ऐसा लगेगा आपको। अगर हम अश्रद्धालु चश्मा से सुनेंगे ना इसको, देखेंगे तो हमको लगेगा कि ये सब बेकार की बातें हैं, लेकिन श्रद्धा को जोड़ दो उसके अंदर, भगवान के विषय में प्रेम को जोड़ दो उसके अंदर, फिर आपको हर हर कथा के हर कदम का, हर पहलू के आपको अलग अलग अर्थ पता चलेंगे, अलग अलग भाव प्रकट होगा, आपका हृदय संपृक्त हो जाएगा उन भावनाओं से। तो मैंने ये कथा पता नहीं हजारों बार कह दी होगी आज तक, लेकिन कभी मुझे दोबारा बोलने के लिए बोर नहीं हुआ, क्या रे वही कथा बोलना है, कुछ नई कथा पढ़ के नई कथा बोलना चाहिए, बोर बोल के थक गया अभी, पता नहीं कितना रिकॉर्डिंग उधर इंटरनेट में होगा इसके बारे में। लेकिन इस कथा को जीवन के अंत तक एक ही कथा को सुबह शाम भी बोलता रहेगा ना, तो भी आपको उसमें कभी भी वो नहीं होगा, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, पता नहीं क्या कहते हैं हिंदी में, मराठी में कहते कंटाला, नहीं आएगा आपको, क्योंकि वो भगवान के विषय की कथा है। केवल इतना ही बोलेंगे ना, कृष्ण बलराम दोनों रेंग रहे हैं, नंद के आंगन में चल रहे हैं ठुमक ठुमक के, बस इतना ही कहते रहेंगे तो भी चलेगा आपको, कभी भी ऐसा लगेगा नहीं इसको बंद करें, क्योंकि जैसे ही जितनी बार आप उसको कहते जाओगे उतनी बार भगवान आपके हृदय में उस लीला को प्रकट करेंगे, आपके हृदय को दिव्य आनंद से भर देंगे। वो फिल्म की कहानी नहीं है, एक था हीरो एक तो हीरोइन, ऐसा सब कितना हिट फिल्म हुआ, 100 वीक हफ्ते पूरे कर दिए उसने, लेकिन आज आप देखेंगे तो कोई देखता नहीं पिक्चर को उसको, कुछ समय के लिए हिट होती है, 800 करोड़ का बिजनेस करते हैं, सब लोग उसके बारे में बोल रहे हैं पिक्चर में क्या कहानी थी, अभी दूसरा पिक्चर चाहिए कुछ देर के बाद में, ऐसा है, क्योंकि वो भौतिक दुनिया के लोगों के विषय में झूठ मूठ की कहानी है, वो काल्पनिक कहानी है। ये सत्य परम पुरुष, परम भगवान, गोलोकेश्वर परात्पर भगवान, उनकी कथा ये दिव्य कथा, छोटी हो या बड़ी हो, उसमें आपको हमेशा आनंद ही मिलेगा। थोड़ी श्रद्धा की आवश्यकता है बस, थोड़ी श्रद्धा होगी तो आपका हृदय शुद्ध होते ही रहेगा, और शुद्ध होगा और शुद्ध होगा, और प्रेम से भर जाएगा आपका शरीर। साथ साथ में आपको जो भी अभी कष्ट है, फिलहाल आपको जो बॉदर कर रहा है, उस सारे कष्ट आपको उस समय के लिए बिल्कुल कष्ट नहीं देंगे। वैसे ही है वो, शायद कोर्ट केस चल रहा है, किधर कोई आपके ऊपर केस डाल रहा है, वो सब टेंशन है बहुत, लेकिन जब कथा में बैठे हैं तो वो दर्द आपको छुएगा भी नहीं, आप परे हो जाएंगे उसके, परे हो जाएंगे। इसलिए कथा में आना चाहिए, कम से कम कुछ समय के लिए को ना हो, सब कष्ट पीड़ा चिंता यातना से हमको मुक्त होना चाहिए, और वो चातना चिंता यातना रहित अवस्था का, दिव्य स्थिति का अनुभव करना चाहिए। कि वो भी क्या स्थिति है, ट्रांसेंडेंटल का मतलब क्या होता है, त्रिगुण त्रिगुण के प्रभाव के परे एक स्थिति उत्पन्न होती है कथा में, जो भगवान के साथ आपको जोड़ देती है। उस समय आप भगवान के साथ हो, चाहे गटर के बाजू में बैठे हो, लेकिन उस समय भगवान के दिव्य लोक में, भगवान के साथ में आप, भगवान के सखा सखियों के साथ में हो, उनके विषय में सुन रहे हो, मानो उनके ही बीच में बैठे हो। अभी मैं जब बता रहा था तो मैंने कहा उधर से कृष्ण आए, इधर राधा रानी है, छलांग लगाई, आपको नजर आया ना मन में, हाँ ऐसे मैं भी आके जब बोलता हूँ तो मुझे भी लगता है कि हाँ उधर से छलांग मारते होंगे। अभी विजुअलाइजेशन होता है ना उसका, अपने आप होता है वो, कोई हमारी कथा की कला नहीं है वो, अपने आप उसके कथा के अंदर ही शक्ति है वो। इसलिए सबसे अगर आपको कभी टेंशन आया होगा ना, कभी बहुत परेशान हो गए आप भगवान की कथा सुनो या पढ़ो, तत्क्षण आप उस चिंता से मुक्त हो जाओगे। हमने इसका कई बार अनुभव किया है, आप भी करो, इतना भाग्य है हमारा, ये मनुष्य जीवन का भाग्य ये है। देवताओं को भी भाग्य उपलब्ध नहीं है, ध्यान रखना। अभी आप लोगों ने इतने दिन में से श्री जी का महाप्रसाद खाया, खाया कि नहीं खाया? अरे जाते हो ना मंगला आरती में, बैठे हो तो लोग आपने आप आके देते हैं, आपको चरणामृत देते हैं, कोई मिश्री दे रहा है, कोई हलवा दे रहा है, कुछ दे रहा है, आपके गोद में आके देते कि नहीं? तो आपने खाया कि नहीं, खाया कि नहीं? वो कितनी सहजता से आपको मिलता है, वो आपको पहाड़ पे जाना है बस, वहाँ बैठ जाना है, फिर आप लोग आपने आके एक बार देते हैं, दूसरा भी आके दे देते हैं, फिर तीसरा भी देता है, वही चीज़ ले लो, ले लो, कोई बात नहीं, हमसे लो, हमसे लो, नहीं नहीं ले लिया, नहीं हमसे लो, हम लोग इधर से पैकेट निकालते हैं, वो पैकेट में डाल के लेके जाते हैं, लेकिन देने वाले बहुत है उधर। इतना आसानी से आपको श्री जी महारानी का महाप्रसाद मिल रहा है, लेकिन ब्रह्मा को भी वो प्राप्त नहीं होता है। क्या कहानी है उसकी, ब्रह्मा जी को लगा एक बार हम कृष्ण का महाप्रसाद खाना चाहिए, मतलब कृष्ण भगवान लीला कर रहे थे पृथ्वी पर, और जमुना किनारे बैठकर भोजन करते थे, कमलाकार बैठकर सब लोग अपने यहाँ से मुँह छिना झपटी करके प्रसाद खाते थे, अपना अपना डब्बा निकाल के थोड़ा खा के कृष्ण को खिलाते थे, उसको निकाल के खुद खाते थे, ऐसे बहुत चटपटी लीला करते थे। और सब खाना पीना जब बड़े जहाँ से बहुत देर तक हो गया ना, फुल टाइम पास कर गई हमारी भाषा में, बहुत समय तक बिताकर एक बार भोजन हो गया, फिर कृष्ण भगवान उठते थे और जमुना जी में जाकर हाथ धोते थे। जब हम भोजन करते तो हाथ में कुछ लगता है ना उसमें, थोड़ा सा चावल थोड़ा सा दाल रहता ना, तो धोते तो वो जाता है बेसिन के अंदर, देखते हैं हम लोग वो कड़ी पत्ता, कभी कभी कहीं कोतिमीर का पाला, कभी कुछ दाल, कभी चावल, ऐसे निकलता है, हम धोते हैं उसको हाथ में, थोड़ा घी रहता तो साबुन से धोते हैं उसको, निकल जाता है। तो वो जो महाप्रसाद है कृष्ण के हाथ में लगा हुआ तिनका, वो जल में जब प्रवाहित होगा तो मैं उसको मछली बनकर खा लूँगा, नेचुरल, कोई हाथ में छीनने की जरूरत नहीं, ला हाथ आगे ला, हाथ कर कैसे खाने की जरूरत नहीं, मछली बनो और जब गिरेगा अपने आप बहेगा तो जाके मछली में खाना है आपको, तो मछली बने वो, और अभी वो किनारे में ही घूम रहे इधर उधर, कभी आएंगे कभी आएंगे, इनकी तो चल रही है लीला, ये छीन रहा है वो छीन रहा है खा रहे है। एक बार बाद में कई घंटे के बाद में हो गया उनका भोजन का समारंभ हो गया, तो कृष्ण भगवान उठे और जमुना जी के पास आए हाथ धोने के लिए, और हाथ धोने ही वाले थे तो देखते हैं कि मछली घूम रही है, और जानते भी है कि ब्रह्मा जी है, मछली बनकर महाप्रसाद देने के लिए आए, बोलते हैं ए दोना लेके आओ जरा, दोना लेके आते हैं, दोना बांध लेते हैं, जमीन में जाके हाथ धोते हैं आया समझ में आपको कि नहीं आया? मछली बन को देख रहे हैं ना उसको, तो वो मछली को देखते हैं कि नहीं ब्रह्मा जी आ रहे हैं, तो वो हाथ धोने का प्लान कैंसिल करते हैं, दोस्त से धोना मंगाते हैं, दोनों में पानी लेते हैं और जमीन पे जाके हाथ धोते हैं, ब्रह्मा जी उपाशी। कहने का तात्पर्य क्या है, ब्रह्मा के लोगों को भी प्राप्त नहीं होता है कि तुम्हारे हमारे जैसे पतित जीव यहाँ पर मुफ्त में प्राप्त कर रहे हैं प्रेम से, ना भाग्य हमारा। यहाँ की हर चीज पर आप ध्यान करो, हर गतिविधि पर, हर चीज पर ध्यान करो, आपको उसका महान महान अर्थ पता चलते रहेगा धीरे धीरे भगवान की कृपा से। जैसे आप चढ़ते हो पहाड़ पे, कैसे बुढ़ी बुढ़ी माताएं धीरे धीरे चढ़ रही हैं, राधे 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 श्री राधे। हम बोलेंगे बस हो गया अभी, इतना बुढ़ापे में कौन चढ़ेगा, इतनी ठंड भी है, उनमें धुंध पड़ रही है, उसके अंदर एक ही कंबल है, कोई साथ में कोई पोता या बेटा कोई है नहीं, अपने खुद जा रहे हैं श्रद्धा से। एक मैया तो ऊंचे गांव से आती है, रोज 2.5 किलोमीटर चल के आती है नंगे पैर, हर रोज 50 डिग्री का टेम्परेचर हो या 0 डिग्री पे बर्फ गिर रही हो तो भी आते हैं। वहाँ आएंगे, चढ़ेंगे, इंतजार करेंगे, वहाँ पर दम खाएंगे थोड़ा सा, फिर अंदर घुसेंगे, फिर वहाँ बैठ कर 6:30 बजे तक कीर्तन करेंगे। हम क्षमा करो अपराध लाडली श्री राधे, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारा बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधा लाडली दया करो। ऐसे अपने अपने गीत गाते हैं, उसमें से बहुत सारे गीत उन्होंने खुद बनाए हुए हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड। हमारे पास एक नर्सिंग विद्यार्थिनी अभी भी है, वो इधर हमारे पास काम करती है, वो हमारे, हमने उसको यहाँ से लेकर हमारे विद्यालय में नर्सिंग का एजुकेशन फ्री में दिलवाया ब्रजवासी कन्या को। अभी उसका विवाह हो गया, अभी माता बनकर अभी वो छुट्टी पर है, इसलिए अभी आपको दिखाई नहीं पड़ रही। उसका नाम है महारानी। वो महारानी ने अपने हाथ से कई ऐसे भजन लिखे हुए हैं जो आज भी वो औरतें ऊपर गाती हैं, उसने लिखे हुए भजन। जगत में यही जीवन को सार, भजन कर राधा रानी को, राधा रानी को भजन कर महारानी को, जगत में यही जीवन को सार, अरे मेरो मेरो कहो छोड़ दे या नादानी को, भजन कर राधा रानी को। तो क्या कह रही है वो, सुनिए, खुद लिखा है उसने। ये बहुत राजा आए, बहुत सारे मेहमान अमीर लोग आए, बहुत राज्य किया उन्होंने, राजधानी में बहुत ऐट किया। जब मौत का समय आया तो कहाँ राजधानी है, क्या है अभी तुम्हारी राजधानी, छोड़ दे नादानी को कि ये मेरा है, ये मेरा मेरा कहो छोड़ दे या नादानी को, भजन कर राधा रानी को। ऐसा उन्होंने खुद लिखा हुआ, वो लोग भी गाते हैं ऊपर कभी। फिर होली आएगी तो होली के गीत गाने लगेंगे, फिर राधाष्टमी के, राधाष्टमी के बधाई गाने लगेंगे, फिर कभी रसिया गाएंगे, फिर कभी वो उत्सव के अनुसार गाएंगे, और आधा पौना घंटा गाते रहेंगे एक सुर में। अब बोलेंगे क्या कर्कश आवाज़ है इनका, क्या सुर नहीं, ताल नहीं, कुछ नहीं, कितना है। आप भाव देखिए उनका भाव, बड़ी बूढ़ी औरतें भी, और सबको देखिए बराबर से, सुबह उठ के ना मेकअप करके आते हैं वो सब लोग, देखा आपने उनको, ऐसा लंबा पल्लू रहता है उनका, कभी कभी चेहरा दिखता है, पूरा लिपस्टिक मेकअप करके आती हैं, क्या भाव है उनका पता है आपको, राधा रानी कृष्ण को मिलने जा रहे हैं ना वो, सज धज के जा रहे हैं, वो खुद के लिए नहीं जा रहे कि मैं कितनी सुंदर हूँ, अरे वो देखेंगे मुझे, उनको खुशी मिलनी चाहिए मुझे देखकर। नहीं तो हम लोग वैसे भी स्नान नहीं किया है, कुछ तेल चेहरे पे लटका हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, कल की साड़ी पे, कल का शर्ट पहना हुआ है, तो कैसे उनको अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगना चाहिए ना, अभी वो भी देख रहे हैं हमको, हम भी उनको देख रहे हैं, केवल हम उनको देख रहे हैं मंगला करते हुए, नहीं वो भी आपको देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो हम ही आपको देख रहे हैं उनको। सी ये सब भाव की बातें हैं, खड़े आप लोग वो आरती घुमा रहे आप खड़े हो, लेकिन कई चीज़ें हो रही है उसके अंदर, हृदय के भाव प्रकट हो रहे हैं, आदान प्रदान हो रहा है, वो जवाब दे रहे हैं, आप पूछ रहे हो, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, क्या बोलेंगे, राधे श्यामा राधे श्याम, क्या रे कान के बात रहा, उधर बोलो ना जरा, कितने कान के पास चिल्ला रहे हो ऐसा लगेगा आपको, लेकिन इतने भाव से पुकारते हो, रोज का है उनका वो। मैंने कई लोगों को बुढ़ा होते हुए देखा है फिर भी रोज आ रहे हैं। एक व्यक्ति तो बिजवारी गांव में रहता है, पता है बिजवारी गांव कहाँ है, बहुत दूर है यहाँ से, नंदगांव से आगे जंगल में गांव है वो, कोई सुविधा भी नहीं वहां पर। वहां से वो 4:30 बजे की नंदगांव की मंगल आरती करता है, बुढ़ा व्यक्ति है, नंगे पैर आता है, और वहां से टेम्पो पकड़ के राधा रानी के मंगला में आता है, और यहाँ के मंगल आरती में वहां का चरणामु सबको देते रहते हैं। बोलो ना, बुढ़ा है वो व्यक्ति, हम लोग नहीं आएंगे अभी, क्या इतने बुढ़ापे में इतने गए ना इतने साल अभी, क्या ठीक है, लेकिन श्रद्धा से आ रहे हैं। केवल जाना नहीं यहाँ पर, ऐसे लोगों को देखना है, इनको देखकर हमको अचंभा होता है कि हमारे अंदर क्या भक्ति है, हम लोग क्या बड़े बड़े डायलॉग मारते रहते हैं प्रवचन में, इनका जीवन ही भक्ति है, हम खाली बोलने वाली भक्ति की बातें करते हैं, लेकिन वो करने वाली भक्ति की बातें कर रहे हैं, जीवन में अपने उतार रहे हैं उसको। तो ये सब देखने के लिए आते हैं हम लोग, प्रेरणा लेने के लिए आते हैं, हम लोग जरा सा कुछ हो गया तो जाते नहीं, लेकिन वो दिन रात में आते रहते हैं। इतनी ठंड पड़ती है यहाँ पर, वो भी वो नियम से जूता नहीं पहनते हैं, बोलो हम लोग तो पैर ऐसे सिकुड़ जाएंगे पूरे, हमारे बर्फ बन जाएंगे, फिर भी आते हैं। अद्भुत धाम है राधा रानी का ये, लोगों की श्रद्धा देखेंगे तो राधा रानी इनकी क्यों नहीं होंगी, बताइए, राधा रानी इनको अपना क्यों नहीं बनाएंगे, इतना त्याग कर रहे हैं, इतनी भावना प्रकट कर रहे हैं, इतना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। तो प्रेम की भूमि है ये, प्रेम का धाम है, बाकी सब भूल जाओ आप, काले गोरे हैं, अनपढ़ है, गंवार हैं, भूल जाओ। हाँ, हो सकता है रोज एक ही ग्रीन शॉल पहन के आती होगी 3 महीने तक, हो सकता है, हु केयर्स फॉर दैट। राधा रानी तो नए नित नए दिल के भाव को राधा रानी देख रही है, वो रोज के हरीशाल को थोड़ी देख रही है राधा रानी। तो यहां पर आकर वो आप ग्रहण करना सीखो, ये इतने महान लोग हैं। रात के नींद में भी हमने देखा है मरीजों को, यहां पर रात के नींद में गहरी नींद सो रहे हैं और राधे 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 ही पुकार रहे हैं, हमको लगा कि बीमार है भाई, सर दुख रहा है, तो जाके देखते हैं दवाई देने के लिए क्या तकलीफ है, खर्राटे भर रहे हैं, मतलब एकदम गहरी नींद में है और नींद में राधे को पुकारते हैं। हम लोग जगते हुए जब जब करते तो सो जाते हैं, वाइल जगे हुए होते हुए हम सो जाते हैं भगवान का नाम लेकर, ये सोते हुए भगवान का नाम ले रहे हैं, ये यहाँ का गणित पूरा डिफरेंट है बाबा, हमारे तर्क के शास्त्र में बैठता नहीं इधर, ये तर्क के सब परे वाला शास्त्र है। तो आइए, आप सबको बधाई हो, आप सब लोग ने यहाँ पर आए और यहाँ का हवा तो कम से कम खाया ना आपने, ऑक्सीजन तो लिया यहाँ का परम पवित्र हवा, सूर्य प्रकाश, हाँ, पेड़ों का दर्शन, कुंड का दर्शन, धाम का दर्शन, रज का स्पर्श, प्रसाद ग्रहण, हाँ, जो सब रस भरा हुआ है सब कुछ, उसके वो ग्रहण करने का भाग्य मिला है आपको, कितनी बड़ी बात है ये, जिंदगी के कई जन्मों के पुण्यों की ये कमाई है आपकी, जो आप यहाँ पर अभी खर्च कर रहे हो, वो खर्च करके भी और मिल रहा है आपको, ऐसे खर्च करते रहो आप जिंदगी में, ऐसा खर्च करो कि और मिलता रहे, हाँ, कभी खर्च खत्म नहीं हो आपका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, राम राम, हरे हरे।